नमस्कार, आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित दो अहम स्रोतों पर बात कर रहे हैं। एक है 21वीं सदी का संविधान, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, और दूसरा उसी से जुड़े कुछ अंश। ये स्रोत ना व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव के लिए एक तरह का मार्गदर्शन देते हैं।
जी बिल्कुल।
इनका मकसद है एक ऐसे सत्संकल्प, मतलब एक अच्छे संकल्प या घोषणा पत्र को समझना जो कहता है कि खुद को बनाने से ही युग बनेगा, आत्मनिर्माण से युग निर्माण। और ये उन पढ़े लिखे नागरिकों के लिए, शायद स्नातक स्तर के लोगों के लिए, खास तौर पर सोचने वाली बात हो सकती है जो समाज में अपनी भूमिका पर विचार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
बिल्कुल। देखिए, इन स्रोतों का जो मूल विचार है ना, वो संकल्प की शक्ति में है। ऐसी मान्यता है कि जैसे परमात्मा के संकल्प से ये सृष्टि बनी, वैसे ही हम इंसानों के अच्छे संकल्पों से, मतलब सत्संकल्प से, समाज और युग का निर्माण हो सकता है। यहां जोर बाहरी उपदेशों पर उतना नहीं है जितना खुद को बदलने पर है। वो सूत्र है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा।
हाँ, हम बदलेंगे युग बदलेगा, सुनने में ये बहुत शक्तिशाली लगता है। स्रोत में ऐसे 18 सूत्र दिए गए हैं और सुझाव है कि इन्हें रोज पढ़ा जाए। पर खैर, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा करते हैं, कुछ खास बिंदुओं पर फोकस करते हैं। वो बिंदु जो शायद आज के हमारे स्नातक स्तर के श्रोताओं के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो।
हाँ बिल्कुल। कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो उभर कर आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है 14, विवेक को परंपराओं से ज्यादा महत्व देना। मतलब किसी भी पुरानी रीति या बात को सिर्फ इसलिए मत मानिए कि वो चली आ रही है, उसे अपने तर्क, अपनी समझ, अपने विवेक की कसौटी पर परखिए।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, खासकर आज जब इतनी सूचनाएं हैं चारों तरफ, विवेक का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा।
सही कहा। और शायद इसी विवेक को असलियत में लाने के लिए 17 चार गुणों पर बहुत जोर दिया गया है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। कहा गया कि इन्हें जीवन का अभिन्न अंग मानना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं जीना इनको।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये चारों गुण मिलकर एक मजबूत चरित्र बनाते हैं।
निश्चित रूप से ये एक नैतिक आधार तैयार करते हैं। और देखिए, इसी नैतिक आधार पर फिर राष्ट्रीय एकता और समता का सिद्धांत खड़ा होता है। संकल्प लेना कि जाति, लिंग, भाषा, प्रांत या मजहब किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये एक समरस समाज की नींव है। और आज के माहौल में तो इसकी अहमियत आप समझ सकती हैं, और भी बढ़ जाती है।
हाँ, ये बात तो है। और इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो 17 ये विचार भी है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता वो खुद है। ये कर्म के सिद्धांत को रेखांकित करता है ना, कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, बल्कि अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उन्हें बदल सकते हैं।
बिल्कुल। और इसी से सीधे जुड़ जाता है 18, वो पक्का विश्वास कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये एक तरह का एक आत्मविश्वास है कि बदलाव संभव है अगर हम शुरुआत करें।
अच्छा, और व्यक्तिगत सुधार के लिए तरीके भी सुझाए गए हैं।
हाँ हाँ, स्रोत में मन को गलत या बुरे विचारों से बचाने के लिए दो चीजें बताई हैं, स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना सीखना, और सत्संग मतलब अच्छे सकारात्मक लोगों की संगति। ये दोनों ही ज्ञान बढ़ाने और खुद को बेहतर बनाने के साधन हैं।
स्वाध्याय और सत्संग, इसमें डोमिंगो सार्मेंटो का एक उदाहरण भी दिया है, कैसे एक बच्चा सिर्फ स्वाध्याय के बल पर पढ़ पढ़कर अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बन गया। ये ज्ञान की ताकत दिखाता है।
अच्छा, तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये सत्संकल्प क्या है? ये एक तरह का खाका है, व्यक्तिगत सुधार का, विवेक से जीने का, नैतिक रूप से मजबूत होने का और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का। और इस सबके पीछे एक ही विश्वास है, व्यक्ति बदलेगा तो युग बदलेगा। जी। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये व्यक्तिगत विकास को, पर्सनल ग्रोथ को, सीधे सीधे समाज और देश के विकास से जोड़ता है। ये सिर्फ अपनी नैतिकता चमकाने की बात नहीं है, ये इसे एक नागरिक कर्तव्य की तरह देखता है कि आत्मनिर्माण सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े लक्ष्य के लिए है, युग निर्माण के लिए।
तो आखिर में ये सब बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, मतलब इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने इरादों में, हमारे रोज के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव भी समाज में कितनी बड़ी सकारात्मक लहर पैदा कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। आज की दुनिया इतनी जटिल है, भारी चुनौतियां इतनी बड़ी लगती हैं, तो क्या ऐसे में वाकई आत्मनिर्माण को युग निर्माण का सबसे प्रभावी, सबसे पहला कदम माना जा सकता है? इस पर सोचना मुझे लगता है काफी सार्थक होगा।